15th November 1999. कुमारों से मुलाकात। अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं होना, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? क्या पूछ रहे बाबा? ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब युद्ध ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब आएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई क्या करे, कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्नों की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यहाँ खुशखबरी लिखो, यही खुशखबरी लिखो। कौन सी? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं। कौन सी खुशखबरी लिखो? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं लिखो। ओके, लंबा पत्र हो तो लिखने में भी आपको शर्म आएगी ना, कैसे लिखे, क्या लिखे। कई बच्चे कहते हैं पोता में लिखने चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोता में लिखे तो उस दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती। बात हुई क्यों, विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या? बाप कहते हैं लिखने से बताने से क्या हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे, आधा कट जाता है, फायदा है। लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो। ओके, बस अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो क्या करो? फिर दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके को लिखो। लंबी कथा नहीं लिखना, यह हुआ यह हुआ, इसने यह कहा उसने यह कहा। यह रामायण और उनकी कथाएं हैं। ज्ञान मार्ग का एक ही अक्षर है, कौन सा? ओके, एक है दो दो अक्षर, एक है तीन तीन अक्षर, आज बाबा कह रहे हैं एक ही अक्षर है, कौन सा? ओके, जैसे शिव बाबा कैसा है?
बिंदी।
और जैसे शिव बाबा कैसा है? ओके में से ओ में, वो कैसा है? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, जीरो। और बिंदी, और
गोल गोल,
जैसे शिव बाबा गोल गोल होता है, वैसे ओ भी लिखते हैं और के अपनी
किंगडम।
तो ओके माना बाप भी याद रहा और किंगडम भी याद रही, इसलिए ओके। और ओके लिखकर ऐसे नहीं रोज पोस्ट लिखो और पोस्ट का खर्चा बढ़ जाए, ओके लिखकर अपने टीचर के पास जमा करो और टीचर फिर 15 दिन व मास में एक साथ सबका समाचार लिखे। पोस्ट में इतना खर्चा नहीं करना, बचाना है ना। और यहाँ पोस्ट इतनी हो जाएगी जो नागेश भाई क्या हो जाएगा यहाँ समय ही नहीं होगा। आप रोज लिखो और टीचर जमा करे और टीचर एक ही कागज में लिखे ओके या नो। इंग्लिश नहीं आती लेकिन ओके लिखना तो आएगा, नो लिखना भी आएगा। अगर नहीं आए तो बस यही लिखना कि ठीक रहा या नहीं ठीक रहा, हिंदी अनुवाद। तो युद्ध की रिजल्ट क्या आएगी, ओके की आएगी या कहेंगे वहां गए ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं करना। युद्ध अपनी कमाल दिखाओ, जो सब कहे कि नंबर वन युद्ध ग्रुप है तो स्पेशल मिला। वैसे पार्टी में आते हो तो सामने थोड़ी बैठने को मिलता है, कोई कहां बैठते हैं। अभी तो बिल्कुल सामने बैठे हो तो इस मधुबन के स्नेह शक्ति को भूल नहीं जाना। धीरज भाई इस मधुबन के स्नेह को और शक्ति को भूल नहीं जाना। सदा कुछ भी हो मधुबन की रिफ्रेशमेंट को याद करना। ऐसे है युद्ध, देखेंगे। सारे ब्राह्मण परिवार की नजर इस समय युद्ध पर है। युद्ध क्या कर रहा है, क्या आगे करता है, यही सब यही सोच रहे हैं। 15th November 1999 की मुरली, कुमार भट्टी अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कल आधा पैराग्राफ पढ़ा था, आज का उसके आगे का। अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे, निमंत्रण मिला स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए, तो अभी आगे क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के। ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो, ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो। मधुबन में माया, कैसा टॉपिक है ये मधुबन में माया के स्वरूप। बाबा पूछ रहे ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा कोई है जिसको यहां मधुबन में भी माया आई हो। मधुबन में कौन कौन सी माया आती है अभी नहीं चर्चा करेंगे। नागेश भाई अगले संडे के लिए 25 पॉइंट्स स्व अनुभव से और दूसरों के अनुभव से, मधुबन में माया क्या क्या माया आ सकती है, आती है, आई थी, आई आ रही है, जो भी सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। मधुबन में भी किस किस रूप से माया आती है और क्या क्या किया जाए उसको जीतने के लिए अगले संडे के लिए। ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब युद्ध ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओगे। विघ्न विनाशक किसका नाम है, आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं, जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाशक। कल भी कहा था निर्विघ्न कब बन जाएंगे, युगल अधर कुमारों से मुलाकात, न्यारे रहने के तो नहीं और अच्छा, तो विघ्न न्यारे हो जाएंगे, वो दूसरी पॉइंट थी। और
नशा
ऐसा नशा चाहिए, आवाज में ही नशा है तो नशा चाहिए। किसके साथ पार्ट है इसका, नशा यदि है तो नशा क्या करेगा, स्वतः ही निर्विघ्न बना देगा वो संग का वायुमंडल वातावरण, कोई भी विघ्न नहीं आएगा। कल बता रहे थे ना रात में, हारे तक ये मुसाफिर नहीं, कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर मंजिल पर जा पहुंचा हूं आसानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। क्या अर्थ है इसका? ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, जब जब सावधानी से चला तब ठोकर लगी, पर मंजिल तक बेहोशी में आसानी से जाकर पहुंचा। विरोधाभास है ना। हम हमेशा बात करते हैं जागरण की, चौकस रहने की, आज बात कर रहे हैं बेहोश हो जाने की। बेहोशी कौन सी बेहोशी है? पर ये एक्चुअली जागरण ही बेहोशी है एक रीति से। ये वो अलग प्रकार की बेहोशी है। चीन का दार्शनिक हुआ है, बहुत बड़ा दार्शनिक, लाओत्से, ताओइज्म जो धर्म है वहां से शुरुआत हुई है। उसने एक प्रसंग लिखा है कि एक बैलगाड़ी में चार लोग जा रहे हैं, उसमें से तीन लोग तो होश में है, एक जो है उसने बहुत शराब पी रखी है और बहुत बेहोश है, आधा बेहोश में है आधा जागृत। तो बैलगाड़ी की दुर्घटना हो जाती है, बैलगाड़ी उलट जाती है, तो जो तीन लोग होते हैं, किसी की हड्डी फ्रैक्चर, किसी के सिर पे चोट लगती है, किसी के पीठ में, किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, पर देखा है ये जो बेहोश आदमी था ये पड़ा हुआ है, मस्ती से लेटा हुआ है, उसको कोई खरोच तक नहीं आई। तो देखकर वो दार्शनिक लिखता है कि ऐसी बेहोशी चाहिए, ईश्वरीय मस्ती चाहिए। अगर ऐसी ईश्वरीय मस्ती होगी तो कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। ये कविता हमको सिक्स स्टैंडर्ड में थी, राम अवतार त्यागी की। आगे कवि लिखता है, प्यासे अधरों के बिन परसे, पुण्य नहीं मिलता पानी को। प्यासे अधरों को बिन परसे, परसे अर्थात स्पर्श किए बिना, जब तक प्यासे अधरों को स्पर्श नहीं कर लेता पानी, पुण्य नहीं मिलता पानी को। याचक का आशीष लिए बिना, आशीष भाई कहाँ है? आशीष इधर ही है। याचक का आशीष लिए बिना स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। सबका आशीष लेना पड़ेगा आपको, मुश्किल काम है, पर ले रहे हैं, लगे हुए हैं। तो याचक का आशीष लिए बिना स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझा कर भर देने से, मैंने अक्सर यह देखा है मेरी गागर भर जाती है। अपनी प्यास को मिटा दी, किसी और की प्यास बुझा दी, मैंने अक्सर यह देखा है क्या हो गया, मेरी गागर भर गई। लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं है, बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गुंजना नहीं है। संकट ग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से, वो संकट ग्रस्त था, मैंने अपनी पतवार उसे थमा देकर, मैंने अक्सर यह देखा है मेरी नौका तर जाती है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, अर्थात किसी की सेवा यदि कर दूं, जो थका है जो प्यासा है उसके चरणों को धोकर पी लेने से, मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। कौन सी बेहोशी? ये बेहोशी एक अलग प्रकार की बेहोशी है, ये नशा है, ईश्वरीय नशा है, ईश्वरीय खुमारी है, इलाही मस्ती है, नारायणी नशा है, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। इसमें यदि कोई है तो संसार के विघ्न नहीं लगेंगे। तो विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हार भले हो लेकिन वार नहीं हो। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखोगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो। कौन की, कौन सी खुशखबरी? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं, नो कंप्लेंट्स, सारी कंप्लेंट समाप्त, किसी के प्रति भी कोई कंप्लेंट नहीं, सब अच्छे हैं संसार में। दमन तो नहीं हो रहा है? सप्रेशन? महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम जो जहां पर भी चलो 24 घंटे अपने मन में मंगल की कामना करो। यदि सड़क पर चलते हो, अगर पर्वत दिख जाए उस पर्वत के मंगल की कामना करो। यदि तुम्हें दरख दिख जाए, दरख्त अर्थात वृक्ष दिख जाए, उस वृक्ष के मंगल की कामना करो। यदि कोई तुम्हें राहगीर मिल जाए तो उस राहगीर के मंगल की कामना करो। अगर तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो गालियां दे, उसके भी मंगल की कामना करो। जितनी गालियां इस संसार में, इस धरती पर महात्मा बुद्ध और महावीर ने खाई है, शायद किसी और ने खाई है। ऐसी ऐसी गालियां उनको दी गई है लोगों ने कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी, इतना अपमानित किया है जगह जगह पर, छोड़ा नहीं है पूरा, इतना अपमानित किया है, इतने बड़े बड़े कलंक लगाए हैं जब वो थे तब। बाद में चले जाने के बाद मूर्तियां बनाकर पूजा करना तो सहज है, पर जब थे तब। शिष्य ने पूछा, उनके शिष्य आनंद ने, ऐसी मंगल की कामना करने से फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा, दो फायदे हैं। एक फायदा जिसको बाबा अपने शब्दों में कहता है, शुभ भावना और शुभ कामना हरेक के प्रति रखो, ये स्टॉक जमा हो, कल भी कहा था। दो फायदे हैं। एक तो तुम्हारे मन में उसको गाली देने का कोई अवसर ही नहीं आएगा। इससे पहले कि तुम उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोचो, पहले ही हमने सोच लिया इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उसके पहले ही हमने ये सोच लिया कि अब हमारे मन में ये अवसर ही नहीं है कि हम उसके प्रति, हमारे मुख से कुछ कटु निकले उसके प्रति, पहले ही हमने ये कर लिया। और दूसरा फायदा है, जो भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है वही रेजोनेंस, वही प्रतिध्वनि उसके मन में भी उत्पन्न होगी, वही एको उसके मन में भी उत्पन्न होगा, वही आवाज गूंजेगा। हमारे मन में यदि मंगल है तो उसके मन में भी स्वतः ही हमारे प्रति मंगल की कामना होगी। दो फायदे होंगे। इसके लिए भारत में प्रथा है, एक दूसरे को मिलते हैं तो गांव में क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां इस तरह की प्रथा है। है कोई देश? कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं जहां इस तरह से ग्रीटिंग्स होती है। ऐसा नमस्कार कह के कहीं ग्रीटिंग होती है क्या? कोई विदेश में, किसी देश में, कहीं पर भी नहीं, केवल और केवल यहां। एक दूसरे के प्रति मंगल की कामना, एक दूसरे को ईश्वर की याद दिलाते हैं। और बाबा भी यहां कहते हैं, ओम शांति। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ब्रह्मा भी कहता है ओम शांति, और तुम बच्चे भी कहते हो ओम शांति, कभी कहते हैं डबल ओम शांति, इससे पहले कि मन में कोई अशांति का संकल्प उत्पन्न हो, पहले ही कह दिया। पर यह कहना भी फिर निमित्त मात्र हो जाता है, वो दूसरी बात है, अर्थ में स्थित होकर नहीं होता है। क्या खुशखबरी लिखो बाबा को? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं लिखो। ओके, लंबा पत्र हो तो लिखने में भी आपको शर्म आएगी। शर्म आएगी ना, कैसे लिखे, क्या लिखे। कई बच्चे कहते हैं पोता मेल लिखना चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोता मेल लिखे, उसी दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती। उसी दिन चैलेंज खड़ा हो जाता है। बात हुई क्यों, विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या? बाप कहते हैं लिखने से बताने से आता कट जाता है, फायदा है, लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो। ओके, बस। और क्या कहा था बाबा ने, अव्यक्त मुरली में ओके लिखो या ओके ओके ऊपर डैश, अगर ओके नहीं है तो नहीं। ये ओके की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था उसके ऊपर डैश कर दो, ओके और डैश मतलब ओके नहीं। अगर कभी कोई गलती हो जाती है, देखो कितना पावरफुल वहां वाक्य है, अगर गलती हो जाती है तो क्या करो, दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके का लिखो, फिर लिखो ओके। क्या करना है, अगर गलती हो जाती है तो कल कहा था ना, एक छोटी सी गलती कर लेते हो, तुम्हारा टाइटल कितना बड़ा है, खुदाई खिदमतगार, विघ्न विनाशक, और गलती एकदम छोटी सी कर देते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा भाव नहीं था, मैं क्रोध करना नहीं चाहता था, हो गया, वो हद के संस्कार बोल और कर्म बन जाते हैं। तो अविनाशी कोई भी संस्कार बन सकता है, अल्पकाल के संस्कार भी कर्म और बोल बन जाते हैं। तो अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके का लिखो। लंबी कथा नहीं लिखना, यह हुआ, यह हुआ, इसने यह कहा, फिर हमने यह कहा, फिर उसने वो कहा, फिर हमने ये कहा, कितना लंबा हो जाता है। कौन सा अक्षर है, ओके, जैसे शिव बाबा कैसा है, गोल गोल है ना, वैसे ओ भी लिखते हैं, वैसे ही ओ अंग्रेजी का ओ भी लिखते हैं, और के अपनी किंगडम, तो ओके माना बाप की याद रहा, बाप भी याद रहा और किंगडम भी याद रही, तो ओके माना बाप और वर्षा, मन मना भव और मध्याजी भव। अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में ओके मतलब ओके के कई सारे अर्थ है, ओके एज अ वर्ब, ओके एज अ एडजेक्टिव, ओके एज अ इंटरजेक्शन, ओके एज अ नाउन, अलग अलग अर्थ है हर जगह पर। एक है कैसे हो, ओके, दूसरा है वो क्लास कैसा था, ओके, ओके था मतलब ठीक ठाक, कोई इतना खास नहीं था, ओके। तबीयत कैसी है, पहले ठीक नहीं थे, अभी ओके हूं। फिर क्या ये चलेगा, हाँ इट्स ओके, मतलब ग्रीन सिग्नल, अप्रूव्ड, यस अप्रूवल, ये भी एक अर्थ है, इंटरजेक्शन भी एक है, ओके ओके, यू आर टीचिंग मी, नहीं ओके का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ओके का कोई फुल फॉर्म नहीं है, परंतु ओके के भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न, एज अ ओके एज अ इंटरजेक्शन, ओके एज अ वर्ब, एज अ वर्ब क्रिया, ओकेइंग। तो तो ओके लिखकर, ऐसे नहीं रोज पोस्ट लिखो और पोस्ट का खर्चा बढ़ जाए, ओके लिखकर अपने टीचर के पास जमा करो और टीचर फिर 15 दिन व मास में एक साथ सबका समाचार लिखे। पोस्ट में इतना खर्चा नहीं करना है, बचाना है, और यहाँ पोस्ट इतनी हो जाएगी जो यहाँ समय ही नहीं होगा। आप रोज लिखो और टीचर जमा करे और टीचर एक ही कागज में लिखे ओके या नो। इंग्लिश नहीं आती लेकिन ओके लिखना तो आएगा, नो लिखना भी आएगा। अगर नहीं आए तो क्या कहो, फिर लिखो कि ठीक रहा या नहीं ठीक रहा, तो युद्ध की रिजल्ट क्या आएगी, ओके की आएगी, या कहेंगे वहां गए ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं करना, स्टॉप दिस ऐसा वैसा, क्या कह रहे बाबा, बहुत होगा, हो गया तुम्हारा ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, युद्ध अपनी कमाल दिखाओ। तो सब कहे कि नंबर वन युद्ध ग्रुप है तो स्पेशल मिला। वैसे पार्टी में आते हो तो सामने थोड़े ही बैठने को मिलता है, कोई कहां बैठते, अभी तो बिल्कुल ये शायद स्पेशल मीटिंग हो रही है तो एकदम बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो इस मधुबन के स्नेह
कुमार भट्टी थी
99 की 15/11/99 कुमार भट्टी। तो इस मधुबन के स्नेह शक्ति को भूल नहीं जाना, सदा कुछ भी हो मधुबन की रिफ्रेशमेंट को याद करना, मधुबन को नहीं भूलना, मधुबन के प्रति प्रेम कम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी देखने को मिल जाए, परंतु मधुबन है क्या, तो मधुबन क्या है और मधुबन का क्या महत्व है। धीरज भाई कितनी पॉइंट लिख के लाएंगे अगले संडे तक, कल ही आए ना, तो एक हफ्ता है यहाँ पर, एक हफ्ता केवल मधुबन क्या है इसका चिंतन करो, मधुबन की क्या महिमा आज तक बाबा ने गाई है उसका चिंतन करो, मधुबन में आते ही आत्मा क्यों उड़ने लगती है उसका चिंतन करो, मधुबन में कौन आ सकता है वो बताएंगे। मधुबन में एक ही दिन दो भिन्न भिन्न पॉइंट, पहले आप सुनाना पर और फिर नागेश भाई दूसरा बताएंगे यहाँ भी क्या क्या हो सकता है, पर दोनों मिलना मत आपस में, अलग अलग ही रहना। तो किसी भी विकार के वशीभूत मधुबन के सामने तख्ती लगी हुई है, अंदर जाते ही क्या दिखा है, किसी भी विकार के वशीभूत कोई भी व्यक्ति इस पवित्र परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता, लिखा है वहां पर। तो इस मधुबन के स्नेह शक्ति को भूल नहीं जाना, सदा कुछ भी हो मधुबन की रिफ्रेशमेंट को याद करना। ऐसे है युद्ध, देखेंगे सारे ब्राह्मण परिवार की नजर इस समय किस पर है, युद्ध पर, सारे ब्राह्मण परिवार की नजर इस समय युद्ध पर है। युद्ध क्या कर रहे हैं, क्या आगे करता है, क्या आगे करता है, सब यही सोच रहे हैं ना। तो क्या सुना मुरली से, निर्विघ्न हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ओके हूँ, वेरी गुड हूँ, कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कोई उत्तर देता है अगर किसी को पूछे तो, बहुत कम देते हैं ना, अगर किसी को पूछो पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, हमको याद है एक बार सूरज भाई ने अचानक हमसे पूछा था पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, हमने कहा था बहुत अच्छा, मतलब अचानक से निकल गया था, तो उन्होंने कहा था ऐसा उत्तर हमने बहुत ही कम सुना है। हैंडसम पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ हो, हैंडसम, स्मार्ट पुरुषार्थ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ, दिल से ऐसा उत्तर निकले कि कैसा चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया, अब क्या वर्णन करूं, ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं है, उड़ी रहे आकाश में,
अति उत्तम,
अति उत्तम, सर्वोत्तम, ऐसा पुरुषार्थ हमारा हो, और उस पुरुषार्थ का भी हमें थोड़ा नशा भी हो तो और बढ़े और बढ़े और बढ़े, स्वयं के लिए भी प्रेरणा हो तो दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा हो। तो और क्या बात कहने के लिए कहा है बाबा ने, पत्र लिखने के लिए कहा है, और पत्र में क्या लिखना है, ओके, छोटा, परंतु एक दूसरी बात भी लिखनी है, अपने दिल का हाल, दिल का हाल सुनाना है, मनुष्य को सुनाना और भगवान को सुनाना, मीना सिस्टर क्या अंतर है इसमें, नहीं अभी बता दो। नहीं बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है, हम उसको बता सकते हैं। नहीं वो इतना विश्वसनीय है कि वो कहीं लीकेज नहीं है वो बात को। अच्छा ऐसा अगर है तो कहीं नहीं बताएगा वो। अब बताओ, वो कहीं नहीं बताएगा आपकी बात, कुछ भी बता सकते हैं उसको। ऐसा है कोई एक अच्छा चलो उसका छोड़ो, पर हम उसको बताएं तो उससे और क्या हो सकता है, फायदे नुकसान कुछ। वो एक छोड़कर, वो तो हो गया, वो विश्वसनीय है, कम ही फैलाएगा।
मैं तो चला बताने
हमने उसे बताया, ठीक चलो उसने नहीं भी फैलाया कहीं तो फिर क्या और क्या हो सकता है। एक तो
हल्के
हो जाएंगे, वो फायदा है, दिल को आराम भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। और नहीं नहीं दिलाराम नहीं, मनुष्य हाँ उनको सुनाएंगे तो क्या होगा, वो तो एकदम विरोध में है फायदे तो नहीं। ऐसा व्यक्ति है जो विश्वसनीय है, जिसे बताया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा ही है, अच्छा पुरुषार्थी भी है। फिर भी एक है मनुष्य को सुनाना, एक है भगवान को सुनाना, इसमें अंतर बताओ। शक्ति नहीं मिलेगी, चलो ये एक बात है। उत्तर भले वो दे दे, हल वो भले बता दे, अपने चिंतन से वो कुछ मार्ग बता दे, राह बता दे, पर शक्ति नहीं दे सकता है। दे भी सकता है अगर ज्यादा थोड़ा पुरुषार्थ में थोड़ा आगे है तो दे देगा। और थोड़ा हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक सूक्ष्म अवलंबन उत्पन्न हो जाता है, सूक्ष्म अवलंबन डिपेंडेंस उत्पन्न हो जाता है उसके ऊपर। वो निस्संग की जो अवस्था है वह नहीं रहती है। हमारा लक्ष्य क्या है, निस्संग। इस संसार में किसी का संग नहीं चाहिए, अकेले ही रहना, किसका क्या भरोसा है इस संसार में, कब कौन धोखा दे। आज सब ठीक है, कल धोखा भी दे। ये बहुत बुरी आदत है मनुष्य की, मरने के बाद कंधे लेना किसी का। क्या करे सुशील भाई ये आदत को मिटाने के लिए, कब से डाल रखी है कि मरो और दूसरों के कंधे पर चलो। ये कैसी बुरी आदत है,
शमशान में घर डाल दे भाई,
शमशान में घर बना दे न मालूम ये आदत कब से डाल दी है मनुष्य ने, मरो और फिर दूसरों का कंधा लो और जाओ ट्रक में तो चार तो चाहिए ना, ऐसा क्या करे कि चार की जरूरत ही ना पड़े। बहुत ही बुरी आदत है ये,
चार टायर लगे होते हैं
हाँ चलो वो भी है। नहीं हमारा पॉइंट चल रहा था क्या, मनुष्य को सुनाना और ईश्वर को सुनाना, शक्ति नहीं मिलेगी, डिपेंडेंस हो जाएगा, और दूसरा आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी, आदत हो जाने से बार बार उसी के पास जाएंगे बताने, कुछ भी हुआ उसके पास जाओ, अच्छा हुआ उसको सुनाओ, महिमा हुई उसको सुनाओ, निंदा हुई फिर उसको ही सुनाओ। वो करेगा क्या, वो कर क्या सकता है हमारे लिए। चलो हमारी निंदा हुई वो क्या करेगा, समझ आए अरे ठीक है बाबा को याद करो, वही कहेगा ना, और क्या कहेगा।
उसके दिमाग खराब
है और विस्तार होगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो छोटी सी बात है उसका और विस्तार होता है, जितना हम ज्यादा उसका वर्णन करते चिंतन चलता है उसका हिस्सा वो भी बढ़ सकता है। एक को ही सुनाना, इसमें हमारा मन एकाग्र होता है। ये जो एक इच्छा है, एक तीव्रता है, जो लगता है इसको सुनाओ उसको सुनाओ, इसको बताओ उसको बताओ, हर दिल की बात सबको सुनाना जरूरी है क्या, क्या मन में उठने वाले वो जो भाव है वो निरंतर भी रहने वाले हैं, थोड़े समय के लिए है, चाहे बहुत ही उद्विग्न हुए है, डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़ी देर के बाद स्वतः ही शांत हो जाएंगे। वो पकड़ पकड़ के सुनाना जरूरी तो है नहीं, हो जाता है। इसके लिए एक को ही सुनाना और एक से ही वो संबंध रखना। ये संबंध में थोड़ा भी दूसरों को सुनाने की आदत अगर बन गई तो फिर बाबा से प्यार बढ़ जाता है। वहां एक नहीं रहा, फिर वहां दो हो गए, बट जाता है डिवाइड हो जाता है, डिविजन बाबा भी फिर क्या करेगा, जाओ वो दिखाया है ना श्री कृष्ण को, भक्त तो याद कर रहा है, तो श्री कृष्ण उठते हैं क्योंकि वो भक्त पर संकट आया है, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, वो हरि गुणगान गा रहा है और वहां लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, और इधर कृष्ण भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी परोस रही है, वो कहता है छोड़ो मैं जा रहा हूँ, भक्त पुकार रहा है, वो कहती है चप्पल तो पहन के जाओ, वो कहता है नहीं भक्त इज इन डेंजर, नहीं रुक सकता, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन अवस्था, और रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। वो कहती है रुक्मिणी अरे क्या हुआ, वो कहता है उसने खुद ही पत्थर उठा लिया हाथ में, इसके लिए अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो खड़ा है तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, पर हम क्या करते हैं, उसके कमरे में गए, 5 मिनट उसको सुनाया, और 1 घंटा जो बाहर भाई बैठा है उसको 1 घंटा सुनाया, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस 2 घंटा किए, और मेल तो बात मत पूछो, इतने लंबे लंबे मेल, वो आया ही था सुनने के लिए, उसको 10 मिनट सुनाया और बाकी सुनाया, इसको बहुत ही शॉर्ट में सुनाया ओके की भाषा में, और जो बाकी लोग हैं उनको उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ये किया, फिर वो किया। हाँ, और दूसरी एक बात, यदि हम ले ले अपने आप को, और हमारे पास सोचो एक व्यक्ति आते रहता है बार बार, ठीक है आज आया ये बात बताई, यहाँ ये डिस्टर्बेंस हुआ, हमने सुन ली, दूसरी बार आया फिर चालू कर दिया, तीसरी बार आया फिर चालू कर दिया, हर बार आके इस तरह बताते रहता है, तो हमें भी फिर उसकी सुनने की दिल नहीं होती है, फिर हमारे मन में भी सूक्ष्म रहता है, अरे इसकी तो आदत ही है हर एक की बताने की, कंप्लेन करने की, कंप्लेन बॉक्स, शिकायत की एक पेटी जैसी बन गई है, जब देखो तब कंप्लेन, और वो कंप्लेंट्स कभी पूरी होती है क्या, कभी नहीं होती। अब ओपीडी में हमारी एक पेशेंट आई थी, माउंट की एक रहने वाली, एक कागज पर अपनी कंप्लेंट्स लिख के आई थी, 41 कंप्लेंट्स, शिकायतें, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, ऐसी कितनी 41, तो हमने कहा इससे तो नहीं होगा, सीधा आपको भर्ती कर देते, और 7 दिन भर्ती किया, फिर उसकी एक एक कंप्लेंट, 2-2, 3-3, 10-10 कम होती गई, आखिरी दिन जब डिस्चार्ज का समय था तो पूछा कि अभी कोई तकलीफ नहीं, उसकी उसने उसको उसी की लिस्ट हमने ओपीडी हमारे केस पेपर में चिपका के रख दिया था, जो वहां से ओपीडी से जो लिया था वो इधर ही लगा के रखा था फाइल में, ये गया, ये भी ठीक, और उसको डिस्चार्ज किया। पर आश्चर्य की घटना तो तब घटी जब 1 हफ्ते के बाद फिर आ गई अपनी नई लिस्ट लेकर।
फिर उसका क्या हुआ?
कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, कंप्लेंट करने भी है ना, झगड़ा करना भी है ना, क्रोध करना भी है ना, उससे करो, क्रोध जो इधर है ना व्यक्तियों के प्रति, अब उससे करो कि बोलते क्यों नहीं हो, कब तक चुप बैठोगे, लड़ाई करो, झगड़ा करो उस एक के साथ, उसके साथ जैसे भक्त करते थे ना, उसी से रूठते थे, नाराज होते थे, ईर्ष्या भी करते थे। मीरा कहती है कि अभी तुमको दूसरी मिल गई है ना, तो उसको ईर्ष्या हो रही है मीरा को, सब कुछ उसी के साथ, पर एक के ही साथ। अरे हमारी सिस्टर है वार्ड में, उसने बाबा को धमकी दी थी बहुत कुछ दिन पहले, बाबा यदि 1 हफ्ते के अंदर पानी पूरी नहीं खिलाई तो सीधा बाहर जाके खा लेंगे, ऐसी पावरफुल धमकी दी थी बाबा को, और 1 हफ्ते में पानी पूरी आ गई थी, हाँ मिल गई। बाबा को भी अपनी देखना था, इतनी मेरी अनन्य बच्ची और बाहर जाके खा ले।
एक और बच्चा था गुजरात का, हाँ। बताया था पहले 2-3 साल हो गए,
हाँ।
तो छोटा सा 8-9-10 साल का होगा, तो रात को उसको ना सोचते सोचते पेशाब हो जाता है,
हाँ।
तो माँ डांटती थी तुम इतना बड़ा हो गया, तंग हो गई माँ। तो फिर एक दिन उसने बाबा को बोला अगर मेरा पेशाब आज बंद नहीं हुआ तुम अपने रास्ते में अपने
तलाक।
बंद हो
बाबा के ऊपर भी संकट आ जाता है कि क्या करूं अब। ये एक छोटी सी कविता के साथ बंद करते हैं। ये कविता हमने लिखी है 18 जनवरी 2006 में, जब हम मधुबन से बाहर थे, मधुबन में रहे थे और मधुबन से फिर बाहर गए, और मधुबन की याद सता रही है। क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, एंड बाबा आई मिस्ड है मधुबन। बाबा हम मिस कर रहे हैं आपका मधुबन। आई मिस द कूलिंग शेड ऑफ द शांति स्तंभ। शांति स्तंभ की जो शेड, जो छाया है, शीतल छाया, वो मैं मिस कर रहा हूँ। आई मिस द एंचांटिंग कुटिया, वो मंत्र मुग्ध करने वाली कुटिया मैं मिस कर रहा हूँ। आई मिस दोज डेज स्पेंट इन मधुबन, वो दिन जो मधुबन में बिताए थे वो मैं मिस कर रहा हूँ। आई मिस दी ओ मधुबन, आई मिस दी विथ ऑल माई थॉट्स एंड विथ ऑल माई ब्रेथ्स, मेरे सारे विचारों से, विचारों के साथ और एक एक श्वास के साथ मैं मिस कर रहा हूँ। विथ ऑल माई टीयर्स, अपने सारे ही आंसुओं के। आई डी डिस्टेस्ट दिस व्यक्त संसार, दिस व्यक्त बॉन्ड्स, मुझे नफरत घृणा है इस व्यक्त संसार से और इस व्यक्त बॉन्ड से। ओ वेयर हैव कम लिविंग धी, ओ वेयर हैव आई कम लिविंग धी, तुझे छोड़कर मैं कहाँ आ गया हूँ। ओ वेयर आर यू लॉस्ट, कहाँ खो गए हो तुम। ओ बाबा मधुबन इज कॉलिंग मी, मधुबन मुझे पुकार रहा है। क्या कह रहा है, कम कम माई चाइल्ड, लीव असाइड एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, ऑल दिस सेंसलेस वॉन्डरिंग आफ्टर ट्रांजिटरी वर्थलेस। ये सेंसलेस वॉन्डरिंग, भटकना, ये आफ्टर ट्रांजिटरी, ये जो क्षणभंगुर है और निर्मूल्य है, व्यर्थ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वर्थ नहीं है। लिव असाइड दिस वर्ल्ड एंड कम टू मी, बाबा दिस सोल कांट स्टे हियर, दिस एसेंसलेस वर्ल्ड विथ इट्स पेनी वर्थ प्लेजर्स एंड टिटिलेटिंग सेंस एंजॉयमेंट इज नॉट माई कप ऑफ टी। शाम सवेरे यादों में तेरे, बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों मेर में हर रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना, खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ, दिल की दवात पे कलम डुबाकर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ।